सुबह के 9 बज रहे थे। शुभ अपने बंगलों पर था। उस दिन शगुन मीटिंग से अचानक निकल गई थी। उसके बाद से उसकी ठीक से शुभ से बात ही नहीं हुई थी। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा शगुन के बारे में ही सोच रहा था। उसके हाथ रुके हुए देखकर उसकी माँ डिम्पल चौधरी ने कहा, क्या हुआ बेबी, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस भी जाना है। वो लगभग 50 साल की औरत थी। अपनी उम्र के मुकाबले वो काफी फिट और फाइन थी। उनके इस तरह कहने पर शुभ ने उनकी तरफ घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। उनके पास में उसकी छोटी बहन झलक भी बैठी थी। वो भी ब्रेकफास्ट करने के बजाय मोबाइल में लगी थी। झलक, कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट, शुभ ने उससे तेज आवाज में कहा, तो झलक ने तुरंत अपना फोन नीचे रख दिया और ब्रेकफास्ट करने लगी। झलक लगभग 20 साल की थी और मेडिकल स्टूडेंट थी। उनके घर का माहौल काफी शांत था। उनके यहाँ काम करने वाले लोग खामोशी से अपने अपने कामों में लगे थे। शुभ ने जैसे ही अपने सामने रखी प्लेट में देखा तो ब्रेड हल्की ज्यादा ब्राउन हुई हुई थी। उसने प्लेट उठाई और उसमें से ब्रेड उठाकर टेबल पर रख दी। उसके बाद उसने प्लेट को नीचे पटक दिया। प्लेट के टूटने की जोरदार आवाज आई। लो, फिर से आज नया तमाशा शुरू हो गया। जिसने भी ये ब्रेकफास्ट बनाया है आज तो उसकी लग गई, झलक ने बड़बड़ाकर कहा। किसने बनाया है ये ब्रेकफास्ट, अभी के अभी यहाँ आओ, शुभ कुर्सी से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाकर बोला। उसकी आवाज सुनकर उनके घर में काम करने वाली कुक दौड़ कर आई। वो एक 40 साल औरत थी। शुभ का मिजाज देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि खाने में आज फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ब्रेकफास्ट में 1% भी चीजें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, फिर ये टोस्ट ओवर कुक कैसे हो गया, शुभ ने चिल्लाकर पूछा। वो मैंने ठीक से ये पकाया था, वो जला हुआ नहीं है, बस थोड़ा हल्का ज्यादा ब्राउन, वो कांपते हुए अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन सी चीज जली हुई है और कौन सी ज्यादा ब्राउन, तुम्हें यहाँ काम पर रखा किसने है, शुभ बीच में ही चिल्लाकर बोला। इससे पहले कि शुभ गुस्से में कुछ और करता, डिम्पल खड़ी होकर उस कुक के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप अंदर जाइए, मैं इससे बात करती हूँ। वो अंदर जाने को हुई तभी शुभ बोला, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। शुभ, बदतमीजी मत करो, पहले ही तुम्हारी वजह से यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग छोड़कर जा चुके हैं। जो भी यहाँ आए हैं वो यहाँ काम करने से डरते हैं, उन्होंने सख्त शब्दों में कहा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इन्हें यहाँ काम नहीं करना तो निकाल दीजिए और डबल सैलरी में किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर कीजिए। आई हेट जब कोई मिस्टेक करता है और झूठ बोलता है। एक तो ये गलती कर रही है, ऊपर से उसे छुपाने के लिए बहाने बना रही है, शुभ ने जवाब दिया। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बात को बिगड़ते देखकर छलक ने वहां से जाना ही सही समझा। घर में इस तरह का माहौल होने की वजह से वो अक्सर बाहर ही रहती थी। उसके जाते ही डिम्पल ने कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन घर में नहीं रहना चाहती, कभी सोचा है तुम्हारे गुस्से का उस पर क्या फर्क पड़ता होगा? आई रियली डोंट केयर किस पर क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं पूरे दिन घर पर नहीं पड़ा रहता, ऑफिस भी जाना होता है। कह दीजिएगा अपनी बेटी से कि वो यहाँ आराम से रह सकती है, शुभ ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। हे भगवान, इस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है, ये अपने आसपास किसी को कुछ नहीं समझता। यहाँ रिश्तेदार इसके लिए रिश्ता भेजते हैं, मैं तो हाँ कहने से भी डरती हूँ। पर ऐसा कब तक चलेगा, कभी ना कभी शुभ को शादी करनी होगी, इसके इस अग्रेसिव नेचर के चलते इससे शादी करेगा कौन? शुभ के जाते ही डिम्पल ने अपने मन का गुबार एक साथ बाहर निकाल दिया। वो कुक अभी भी उसके सामने खड़ी कांप रही थी। उसने कहा, मैडम जी, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, सर इतना गुस्सा करते हैं कहीं मेरी हार्ट अटैक से मौत ना हो जाए, मुझे माफ़ करते लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इससे पहले कि डिम्पल उसको रोक पाती वो जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही डिम्पल ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, लो ये भी भाग गई, अगर यही चलता रहा तो एक दिन इस घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। डिम्पल शुभ के बर्ताव को लेकर परेशान थी, तो वहीं शुभ को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ से ऑफिस जा रहा था, गाड़ी उसका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। वो पीछे बैठा बाहर की तरफ देख रहा था और शगुन के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारे साथ इतने प्यार से पेश आता हूँ, तुम्हारे गुस्से को प्यार से हैंडल करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। पिछले 2-3 दिनों से तुम कहाँ हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, ऑफिस में भी नजरें चुराती रहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? अगर ऐसा हुआ ना शगुन, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शगुन को किसी और के साथ सोचने का ख्याल ही शुभ को पागल कर रहा था। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंचा। शगुन ऑफिस आ चुकी थी और अपने केबिन में थी। ऑफिस आते ही शुभ सीधा शगुन के केबिन में गया। गुड मॉर्निंग शगुन, उसने नॉर्मल तरीके से कहा और शगुन के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तुम्हें इस समय मेरे केबिन में नहीं होना चाहिए, शुभ कोई देख लेगा तो हमें गलत समझेगा। तो क्या हो जाएगा और क्या गलत समझेगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं इस सच को और छुपाना नहीं चाहता। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन मैं सबके सामने हमारा रिलेशन ऑफिशियल करना चाहता हूँ। शुभ की बात सुनकर शगुन गुस्सा हो गई। अनुभव की वजह से वो पहले से ही परेशान थी, ऊपर से इस तरह शुभ का आकर ये सब कहना उसके गुस्से में आग में घी का काम कर रहा था। आर यू मैड, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर तुम्हें इतना ही रिलेशन रिलेशन खेलना है तो खत्म कर दो ये सब। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं तंग आ गई हूँ इन सबसे। शगुन ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन शुभ पर उतार दी। ठीक है, फिर यही सही। आज के बाद हम दोनों के बीच सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होगा, मिस शगुन गोइंग का। शुभ भी आज काफी गुस्से में था। उसने शगुन की बात तुरंत मान ली और वहां से उठकर जाने लगा। उसके जाते ही शगुन ने अपना हाथ टेबल पर मारा। हाँ, अब मेरी जिंदगी में यही होना बाकी रह गया है। कितना कुछ सोचा था और सब अलग हो रहा है। तुम्हें कैसे समझाऊं? फिलहाल हम दोनों का रिलेशन लोगों के सामने पब्लिक करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए अनुभव से पीछा छुड़ाना है। लेकिन इन सब के चक्कर में मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शगुन उठी और शुभ को मनाने के लिए उसके केबिन में जाने लगी। मे आई कम इन सर? उसने दरवाजा हल्का सा खोलकर पूछा। नो यू कांट मिस गोइंका, मेरा अकेले रहने का मन कर रहा है, मुझसे दूर रहो, शुभ ने जवाब दिया। उसके मना करने के बावजूद शगुन अंदर चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो शुभ के पास आई और उसको जबरदस्ती गले लगा लिया। यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम जो मांग रहे हो मैं अभी नहीं कर सकती, मुझे बस सही समय का इंतजार है। शगुन शुभ को समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने शगुन को खुद से दूर किया और कहा, जिस दिन तुम्हारा वो सही समय आ जाएगा उसी दिन बात करेंगे। शुभ प्लीज डोंट डू दिस, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे हर्ट मत करो। शुभ ने नोटिस किया शगुन की आंखें भीग रही थी। उसने उसे वापस गले लगाया और कहा, बस मैं यहीं आकर हार जाता हूँ और तुम हर बार मेरी कमजोरी का फायदा उठाती हो शगुन। जब तुम्हारा सही वक्त आ जाएगा तब मैं एक मिनट की भी देर नहीं करूंगा, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं। आई वॉन्ट टू मैरी यू।
शगुन ने इस बार ज्यादा बहस नहीं की और हाँ में सिर हिलाया। शुभ अभी तक उसे गले लगाकर खड़ा था। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर शुभ ने कहा, क्या कुछ ऐसा हुआ है शगुन जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम 3 दिन से मुझसे ठीक से मिली तक नहीं हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम का प्रेशर है, शगुन ने जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम जिन भी प्रोजेक्ट्स को संभाल रही हो उसकी सारी फाइल्स मेरे केबिन में भिजवा दो, मैं सब देख लूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता शगुन, शुभ उससे अलग होकर बोला। वो चेयर पर बैठ गया और उसने शगुन को अपनी गोद में बैठा लिया। मैं देख लूंगी, तुम ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हो, मेरा बर्डन भी तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हारा बर्डन संभालने के लिए हमेशा से तैयार हूँ और आगे भी रहूंगा, बस तुम एक बार कहकर तो देखो, शुभ ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। शगुन चाहकर भी शुभ को कुछ नहीं बता सकती थी। ऐसे में वो खुद को और ज्यादा प्रेशराइज फील कर रही थी। काम का बहाना बनाकर वो शुभ के केबिन से वापस अपने केबिन में आ गई, पर उसे शुभ से झूठ बोलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कब तक इससे झूठ छुपाऊंगी? मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आकर शादी के लिए हाँ तो कह दी है, पर सच में वो अनुभव इस शादी को रोकने के लिए कुछ करेगा तो ना? कहीं हम दोनों की शादी हो गई तो? अनुभव के साथ शादी करने के ख्याल से ही शगुन घबरा गई। वो इन सबसे ध्यान हटाने के लिए काम पर फोकस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ मित्तल विला में नवीन और रचना गोयंका आए हुए थे। मित्तल फैमिली भी आज अपने काम पर ना जाकर घर पर मौजूद थी। वो सब लोग साथ मिलकर शगुन और अनुभव की सगाई की प्लानिंग कर रहे थे। भाई, मैं अब और देर नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं शगुन का जल्द से जल्द अपने घर पर बहू बना कर ले आऊं, वाणी ने कहा। हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, शगुन को भी बहुत जल्दी थी। उसने आधी रात को कॉल किया था। मैं और नवीन तो कॉल देखकर घबरा ही गए थे। फिर जब उसने ये बताया कि उसे भी अनुभव पसंद है और वो उससे शादी करना चाहती है, तो मैं तो खुशी के मारे सब भूल गई। रचना ने उन सबको रात की पूरी कहानी बता दी। चलो, अब जब दोनों बच्चों ने हाँ कह दी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्द से जल्द शादी करके इन्हें थोड़े टाइम के लिए फ्री कर देंगे। इनका फ्री टाइम खत्म होने के बाद हमारे आराम करने का टाइम होगा, फिर सारी जिम्मेदारियाँ इन्हीं को ही संभालनी है, नवीन ने कहा। हाँ, तुम शगुन को सब कुछ सौंप सकते हो, वो एक जिम्मेदार बच्ची है, पर मैं अनुभव के कुछ और टेस्ट लेना चाहता हूँ, आकाश ने कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से उनकी तरफ देख रहे थे। ये भी ना, अनुभव के साथ बिल्कुल एक प्रिंसिपल की तरह बिहेव करते हैं। आपको जितने टेस्ट लेने हैं ले लेना, देखना मेरा बेटा हर एक टेस्ट में पास होगा, वाणी ने गर्व से कहा। आपसी बातचीत के बाद उन्होंने घर के पंडित को बुलाया और उन दोनों की कुंडली दिखाकर सगाई का शुभ मुहूर्त पूछा। पंडित जी ने उन दोनों की सगाई का मुहूर्त ठीक 5 दिन बाद निकाला था। सब कुछ किस तरह सेट करना है ये हम शगुन और अनुभव से ही पूछ लेंगे, आफ्टर ऑल उनकी शादी है तो उन्हें डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने का पूरा हक है, आकाश ने कहा। जी बिल्कुल, हम शगुन और अनुभव को कॉल करके यहीं बुला लेते हैं। आप ऐसा कीजिए आकाश जी, अनुभव की छुट्टी के लिए अप्लाई करवा दीजिए। रचना, तुम भी शगुन को बोलो कि कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर यहाँ आ जाएं, वाणी ने कहा। दोनों बच्चे अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आएंगे, इससे अच्छा हम सभी वहाँ चलते हैं, सुना है देहरादून बहुत अच्छी जगह है, अचानक जाएंगे तो बच्चे सरप्राइज हो जाएंगे और खुश भी, नवीन जी ने सुझाव दिया। सबको नवीन जी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने अगले दिन ही देहरादून जाने का सोचा। शगुन और अनुभव ने एक दूसरे के भरोसे सगाई के लिए हाँ तो कह दी थी, पर वो दोनों भी नहीं जानते थे कि सब कुछ इतनी जल्दबाजी में होगा।